ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने टाइफाइड की वैक्सीन का किया शुभारंभ। बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन देने का प्रधानमंत्री देउवा ने किया अभिभावकों से आग्रह। वैक्सीन अभियान अंतर्गत करीब 75 लाख बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन देने की मंत्रालय की तैयारी। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पद पर गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला हुए नियुक्त। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को किया बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने टाइफाइड की राष्ट्रीय वैक्सीन अभियान का आज शुभारंभ किया है। रानी पोखरी स्थित हाई स्कूल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री देउवा ने स्वास्थ्य कर्मियों को टाइफाइड की वैक्सीन हस्तांतरण कर अभियान का शुभारंभ किया। नेपाल में जनसंख्या की समस्या के तौर पर टाइफाइड बीमारी नियंत्रण करने के लिए वैक्सीन अभियान प्रभावकारी साबित होने की बात बताते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने सभी बच्चों को वैक्सीन देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवाड़ा ने कहा कि दक्षिण एशिया में पहली बार टाइफाइड की वैक्सीन दी जा रही है, जिसकी शुरुआत नेपाल से हुई है। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख विद्यासुंदर शाक्य ने कहा कि महानगर के सभी बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 600 स्कूलों में स्वास्थ्य कर्मियों को खटाया गया है। राष्ट्रीय वैक्सीन कार्यक्रम में समावेश की गई टाइफाइड की वैक्सीन 15 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद शर्मा कोइराला ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने मंत्री कोइराला को शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, संवैधानिक निकाय के प्रमुख लगायत विशिष्ट पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह इससे पहले कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। इसी बीच आज ही नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री कोइराला और उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री बड़ू ने अपने अपने मंत्रालय में पदभार संभाला। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवाड़ा ने कहा कि नन कम्युनिकेबल डिजीज के रोकथाम और नियंत्रण में सभी पक्षों को समन्वय और सहकार्य आवश्यक है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खतिवाड़ा ने ये बात कही। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने कहा कि संसद की समस्या संवाद के जरिए समाधान होगा। सिंधुपाल चौक में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा ने ये बात कही। सभामुख सापकोटा जुगल गांवपालिका वार्ड नंबर 2 गोलचे बगर स्थित वार्ड कार्यालय परिसर में आयोजित जनता के साथ सभामुख कार्यक्रम में भी शरीक हुए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले ने कहा कि आगामी बैसाख 30 गते होने जा रहे स्थानीय तह के चुनाव में मुद्दा और आवश्यकता के आधार पर पार्टी चुनावी गठबंधन करेगी। काठमांडू में आयोजित छठ में भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव में मंत्री आले ने कहा कि मौजूदा गठबंधन आगामी चुनाव तक कायम रहेगा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल को समृद्ध बनाने के लिए एमाले प्रतिबद्ध है। नेकपा एमाले बांके द्वारा नेपालगंज में आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के विकास और समृद्धि के लिए स्थानीय तह के चुनाव में जनता एमाले को नेतृत्व तक पहुंचाएगी। आज ही बर्दिया में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबास की समस्या का समाधान एमाले करेगी। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अधिकृतों की सूची में फेरबदल की है। आयोग द्वारा इसी चैत 13 गते सार्वजनिक की गई सूची से 71 लोगों को हटाकर उनके स्थान पर नए निर्वाचन अधिकृत को निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया है। आज काठमांडू में आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न कारणों से चुनाव में काम न कर सकने की सूचना देने वाले निर्वाचन अधिकृतों को हटाकर नए अधिकृतों को नियुक्त किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं, सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहा कि आगामी चुनाव सामान्य नहीं है, यह प्राप्त उपलब्धियों की रक्षा और बाकी अधिकारों के लिए लड़ने का अभियान है। आज सिरहा की मिर्चैया में एक कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रचण्ड ने कहा कि अभी भी संविधान को निरस्त करने और प्राप्त उपलब्धियों को समाप्त करने के लिए कई शक्तियां जुटी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा करते हुए अन्य अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के अभियान के रूप में चुनाव को लेना चाहिए। सरकार ने लंबे समय से विभिन्न 20 देशों के लिए रिक्त रहे राजदूत पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने परराष्ट्र सेवा से 8 और सत्ता साझेदार दलों की सिफारिश पर 12 लोगों को विभिन्न देशों के लिए नेपाल के राजदूत पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ने निर्वाचन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों को निर्वाचन आचार संहिता के पालन की अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहार में लाने का सुझाव दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व अध्यक्ष रेग्मी ने कहा कि आचार संहिता के पूर्ण पालन से चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, मितव्ययी और भयरहित बनाया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और निष्ठा के राजनीतिक संस्कार को स्थापित करने के लिए आचार संहिता के पालन पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि संविधान सभा के जरिए संविधान जारी करने की नेपाली जनता की लंबी आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व अध्यक्ष रेग्मी के ही नेतृत्व में गठित सरकार ने संविधान सभा का दूसरा चुनाव सफलतापूर्वक करवाया था। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूसाल ने समृद्ध नेपाल निर्माण में सहयोग करने का निजी क्षेत्र से आग्रह किया। आज ललितपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की दूसरी वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन के दौरान मंत्री भूसाल ने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद सार्वजनिक, निजी और सहकारी की तीन स्तंभीय अर्थनीति अपनाते हुए देश का आर्थिक विकास करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। साथ ही मंत्री भूसाल ने यह भी कहा कि देश के आर्थिक विकास में आपसी सहकार्य और समन्वय करके आगे बढ़ना चाहिए। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि हमारी पार्टी अन्य पार्टियों के साथ तालमेल कर चुनाव में जाएगी। आज नेपालगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष थापा ने कहा कि मुख्य रूप से नेकपा एमाले के साथ सहकार्य कर चुनाव में जाएंगे। आज देशभर में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज 25 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। इसी तरह आज 50,093 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इमरान खान सरकार के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को असेंबली का सत्र बुलाने का आदेश भी दिया है। फैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। 3 अप्रैल को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बता रही है, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए विपक्षी नेता विदेशी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने टाइफाइड की वैक्सीन का किया शुभारंभ। बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन देने का प्रधानमंत्री देउवा ने किया अभिभावकों से आग्रह। वैक्सीन अभियान अंतर्गत करीब 75 लाख बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन देने की मंत्रालय की तैयारी। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पद पर गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला हुए नियुक्त और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को किया बहाल। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।